संतप्त मान से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। अभी अपन ने इन गाथाओं का पाठ किया, इन्हीं गाथाओं पर अपने 10 दिन तक व्याख्यान चलेंगे, और यदि अपन रोजाना इन्हें पाठ करेंगे तो 10 दिन में ये गाथाएं भी अपन को याद हो जानी चाहिए। इन गाथाओं में जो बात कही गई है वो अत्यंत सरल हिंदी भाषा में कही गई है, आप थोड़ा भी उपयोग लगाएंगे तो उसका अर्थ आपकी समझ में आएगा कि क्या है। अपन को अभी 63वीं गाथा से बात आरंभ करनी है, 63वीं गाथा से। अपने यहाँ जयपुर में जहाँ से पहली गाथा से प्रवचन सार चलता है, 62 गाथा तक अपन प्रवचन हो चुके हैं, उसके बाद 63वीं गाथा से बात चल रही है। ये प्रवचन सार नामक शास्त्र जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है। इसमें कहा प्रवचन सार, माने भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिड़ती है उसको बोलते हैं प्रवचन। वचन तो सारे लोगों के होते हैं, और जो उत्कृष्ट जाति के वचन होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रवचन। तो तीर्थंकर परमात्मा के वचनों से और उत्कृष्ट जाति के वचन किसके होंगे, इसलिए भगवान की दिव्य ध्वनि भगवान के प्रवचनों का सार लेकर यह ग्रंथ आचार्य कुंदकुंद देव ने 2000 वर्ष पहले बनाया। कुंदकुंदाचार्य अपने दिगंबरों के सबसे बड़े आचार्य हैं। ये आप जानते होंगे कि हमारे मंदिरों में जिनेन्द्र भगवान की जो मूर्तियां विराजमान हैं, यदि हम कहें कि उनमें ऋषभ देव की मूर्तियां कितनी होंगी, धर्मनाथ की कितनी होंगी, तो अपन मोटा मोटा हिसाब लगाएं कि 24 मूर्तियां होंगी तो एक धर्मनाथ की होगी, 23 दूसरी होंगी ना 24 ही में। लेकिन हर मूर्ति पर आचार्य कुंदकुंद का नाम अवश्य लिखा होगा, पढ़ लेना उसमें। यानी हमारे कुंदकुंदाचार्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनका नाम लिख दिया तो ये मूर्ति दिगंबर मूर्ति है ये बात असहज ही सिद्ध हो जाती है। महावीर की मूर्ति को हम दिगंबर मूर्ति सिद्ध करना चाहें तो कदाचित पसीना छूटे अदालत में प्रमाण पेश करते करते, लेकिन वो कुंदकुंद का नाम लिखा है तो सब जानते हैं कि ये दिगंबर मूर्ति है। हम जब मंगलाचरण करते हैं तो उसमें बोलते हैं मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। भगवान महावीर के बाद गौतम गणधर का स्मरण किया, और गौतम गणधर के बाद सीधे आचार्य कुंदकुंद का स्मरण किया, और उसके बाद किसी का नहीं किया। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, और मंगलम कुंद कुंदाद्यो, कुंद कुंद आदि। तो बाकी को सबको आदि में ले लिया, कुंद कुंद से लेके अब तक जितने भी आचार्य हुए हैं उन सब आचार्यों को आदि में ले लिया, और कुंद कुंद का नाम उल्लेख पूर्वक उनका नाम कहकर उन्हें याद किया। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जैन दिगंबर परंपरा में आचार्य कुंद कुंद का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य कुंद कुंद के 5 परमागम ग्रंथ हैं। जिसमें समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकार, नियम सार और अष्टपावड़ है। इन पांचों में समय सार को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। लेकिन फिर भी समय सार को आज तक किसी यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्स के पाठ्यक्रम में नहीं रखा, जैन दर्शन का सब्जेक्ट है तो भी। और ये प्रवचन सार ग्रंथ 150 विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में कम से कम 100 वर्ष पीछे से है, आज से नहीं, 100-125 वर्ष से लेकर ये निरंतर अपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता रहा है। इसलिए यूनिवर्सिटी लेवल पर समय सार से भी कई गुणी महिमा इस प्रवचन सार नामक ग्रंथ की। इसमें क्या कारण है? इसमें कारण ये है कि इसमें जो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन है वो उसी शैली से है कि जिस शैली में विश्वविद्यालयों में फिलोसफी पढ़ाई जाती है। माने दुनिया को दो भागों में बांटा जाता है, एक जानने वाला तत्व और एक जानने में आने वाले तत्व, है ना? एक ज्ञान तत्व और एक ज्ञेय तत्व, एक प्रमाण तत्व और एक प्रमेय तत्व। इसके भी अधिकारों के नाम ऐसे ही हैं, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, फिर दूसरा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, फिर तीसरा है चरणान योग सूचक चूलिका। ज्ञान तत्व महाअधिकार में अपन कहां से बात शुरू कर रहे हैं इस बात को मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये पता रहे कि अपन कहां खड़े हैं। इसके पीछे 62 गाथाओं में क्या बात हो गई है और अब अपनी क्या बात चल रही है, इस बात को मैं 5 मिनट में बताऊंगा और बराबर आपके ध्यान में आएगी। उन लोग जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नाम का अधिकार है, पहला महाअधिकार, उसके 4 अधिकार हैं, शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञानाधिकार, सुखाधिकार और सुपरिणामाधिकार। उन 4 में अपन अभी 3 की बात कर चुके हैं, ये तीसरे की बात अंत में चल रही है। शुद्धोपयोग अधिकार सबसे उनने ये कहा आचार्य देव ने मंगलाचरण में कि मैं अब साम्य भाव को प्राप्त होता हूं, है ना? तो उनने कहा ये साम्य भाव क्या है? तो उनने कहा मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वो है साम्य भाव। मोह माने मिथ्यात्व और क्षोभ माने राग द्वेष, 25 कसाएं, इनसे रहित जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम है साम्य भाव और उसको अपनी शास्त्रीय भाषा में कहते हैं शुद्धोपयोग। जब मैं अब शुद्धोपयोग में जाता हूं तो उन्होंने कहा ये शुद्धोपयोग क्या चीज है जहां आप जा रहे हो? तो उन्होंने सबसे पहले शुद्धोपयोग अधिकार में लिखा और 12 गाथाओं में वो शुद्धोपयोग क्या चीज है ये समझाया। फिर कहा कि ये तो ठीक है लेकिन इसके समझने से हमें फायदा क्या होगा? इस शुद्ध रूप से ये व्यापारी है, यानी सब व्यापारी समाज हैं, वे बिना फायदा के कोई बात नहीं करते। तुम ये बताओ कि इससे हमें लाभ क्या होगा? तो उनने कहा कि इस शुद्ध उपयोग तुमने यदि किया तो तुम्हें अनंत ज्ञान यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, और अनंत सुख की प्राप्ति होगी। कि शुद्धोपयोग में यदि तुम जाओगे, शुद्धोपयोग नाम का धर्म करोगे, तो तुम्हें अनंत ज्ञान माने केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। दुनिया में इससे बड़ी कोई दूसरी चीज नहीं है। तो उन्होंने कहा समझाओ तुमके अनंत ज्ञान क्या है, ये केवल ज्ञान क्या चीज है और अनंत अतीन्द्रिय आनंद क्या चीज है, तुम हमें ये बताओ। तो उनने ये दोनों बातें बताई। तो प्रवचन सार के इस ज्ञानाधिकार में पहले में केवल ज्ञान का स्वरूप और दूसरे में अनंत सुख का जो मोक्ष में सुख है उसका स्वरूप बताया है। अभी अपन वो दूसरा सुखाधिकार चल रहा है और उसके बीच में बात अपनी आ रही है। अपन कहाँ खड़े हैं, क्या हो गया है और क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ तो आपको आगे समझने में सुविधा रहे। और ये गाथाएं का अपन जब पाठ करेंगे ना, तो यदि आप पाठ करने के पहले आ जाएंगे और पढ़ेंगे तो आपको बराबर ख्याल में आएगा कि कल तक क्या बात हो गई थी और आज अब क्या बात हो रही है। इस समझने में अपन को सुविधा रहेगी बहुत बढ़िया, इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। देखो ये अनंत ज्ञान केवल ज्ञान ये जानने से की क्या जरूरत है और अनंत सुख को भी पहचानने की क्या जरूरत है। ये कैसी बात करते हो, तुम्हें अनंत सुख चाहिए नहीं, तुम्हें अनंत सुख चाहिए है ना, तो उसे पहचानना नहीं चाहिए। आप सुबह आपने भगवान की पूजन की होगी, सबसे पहले कौन सी पूजन की थी, देव सास गुरु पूजन की थी ना। सच्चा देव किसे कहते हैं, यदि आप चार दिन भी पाठशाला गए होंगे कभी जिंदगी भर में तो आपने ये बात पढ़ ली होगी कि जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होता है उसे सच्चा देव कहते हैं। मालूम है सबको, तो वीतरागी और सर्वज्ञ हो वो सच्चा देव है ना। तो सर्वज्ञ माने केवल ज्ञान, केवल ज्ञान माने सर्वज्ञता माने जो सब चीजों को जाने उसका नाम है सर्वज्ञ। तो उसमें क्लियर है ना, सर्वम जानीति इति सर्वज्ञ, तो सबको जाने उसका नाम है सर्वज्ञ। तो अपने भगवान कैसे हैं, सर्वज्ञ है ना, सब बात जानते हैं ना, सब धर्म वाले ये बात मानते हैं कि उनके जो भगवान हैं वे सारी दुनिया की सब बातें जानते हैं। अपन भी मानते हैं, उनकी पूजा वैसे ही थोड़ी करते हैं। जरा विचार करना कि यदि अपन को भगवान बनना है, अपन को भी वैसा सुख चाहिए जैसा भगवान को मिला है, तो आप कहोगे हमें नहीं बनना भगवान। क्यों, पहले हम इंसान तो बन जाएं, फिर तुम हमसे भगवान बनने की बात कहियो। भैया ये बात नहीं है, हम तो आपको इंसान समझ के ही आए हैं और आप कहते हैं कि हम पहले इंसान बन जाएं। भगवान बनना कोई बड़ी बात नहीं है, आप घबराओ मत के ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्यों कि भगवान महावीर भी एक दिन हम और आप जैसे ही थे, थे ना, शेर की पर्याय में थे। उसके पहले दिन सात में नरक से निकल के आए थे। कौन, भगवान महावीर का जीव। अभी अपन तो बहुत अच्छी पोजीशन में है, ना शेर है ना नरक में है, है ना। और उनको आकाश में से दो चार ने दिराजी मुनिराजों ने समझाया तो उनने शेर की पर्याय में सम्मा दर्शन की प्राप्ति करी थी। तो जब वो शेर भगवान बन सकता है, भले ही नौ दस भव लग जाएं, क्यों अपन नहीं बन सकते हैं। ये पूंछ वाला पशु बन सकता है तो ये मूंछ वाला आदमी नहीं बन सकता है। लेकिन क्या कह रहे हैं, मूंछ नहीं कहा है, मेरे कहने का मतलब भगवान बनना बड़ी बात नहीं है, हम जितनी जो समझ रहे हैं, जो हमारे मोक्ष में जितने सिद्ध भगवान हैं, वे भगवान हैं कि नहीं है। अब अपन को मोक्ष में जाने कि नहीं जाने, बोलो। नहीं जाने तो मोक्ष नाम क्यों रखवाते हो? मोक्ष का तो मतलब ही ये होता है, मोक्ष में जाने की इच्छा है जिन्हें। तो तुम खुद भगवान बनना चाहते हो और हम कहते हैं तो कहते हो बड़ी बात है। क्यों आदिनाथ से लेकर महावीर तक जितने भी अपने तीर्थंकर बने हैं, वो अपनी पिछली पर्यायों में हम और आपसे भी गए बीते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि जैन दर्शन न केवल नर से नारायण बनाने वाला दर्शन है, अपितु पशु से परमेश्वर बनाने वाला दर्शन है ना। ना भाई, एक इस भव में तो अगले भव में ना और दो चार भव में लग जाएंगे। आपने अपने प्रथमान योग में सैकड़ों कहानियां पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं, जो शास्त्रों में जो बुरी से बुरी हालत में थे और बाद में बेजी मोक्ष गए, तो मोक्ष में गए तो भगवान बन गए कि नहीं बन गए? और कैसे भगवान बनना? तो वो कहते हैं कि जो अरहंत सिद्ध भगवान बनेंगे तो भगवान का स्वरूप क्या है कि जो सारी दुनिया को जाने, उसे भगवान कहते हैं। अब हम क्या कोशिश करते हैं? क्या कोशिश एक करनी चाहिए कि हम सारी दुनिया को जान लें, ऐसा उपाय करें। हमारी कोशिश ये रहती है कि सारी दुनिया हमें जाने। बोलो, भगवान किसे कहते हैं जो सारी दुनिया को जाने कि सारी दुनिया जिन्हें जाने? हम अखबार में अपना फोटो छपाते हैं क्यों? काय के लिए? कि सारी दुनिया हमें देखे कि हम सारी दुनिया को देखेंगे? जो जो अखबार पढ़ेगा उसे आप देख लेंगे नहीं देखेंगे, पर आपको सब देखेंगे। हमारे जितने प्रयास हैं सब हमें जाने इसके हैं, हम सबको जाने इसके नहीं हैं। माने हमारा रास्ता भगवान बनने का नहीं है, उससे उल्टा है। इस रास्ते से कैसे बनेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग आपको जाने तो आपका काम चल सकता है? हैं? जैसे आप म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में खड़े होंगे तो कम से कम 150,000 आदमी को जानना चाहिए ना, इतने वोटर तो होते होंगे, मुझे ज्यादा पता नहीं है। इतने लोग तो हमें जानना चाहिए ना, कोई बात नहीं है। इतने से काम चल जाएगा कि नहीं? नहीं, यदि पूरी दिल्ली जाने तो और ही बढ़िया है। अरे पूरी दिल्ली क्या, पूरा हिंदुस्तान जाने तो काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? मोदी जी को तो सारे हिंदुस्तान वाले जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तभी भगवान बन गए होंगे। सारी दुनिया तुम्हें जाने ये रास्ता नहीं है क्या? और तुमको यदि सारे लोग, अल्लाह, अरबों लोग जाने, करोड़ों लोग जाने यही इच्छा है, तो मैं बताता हूं कि आपको अभी करोड़ों लोग जानते हैं, हमें जानते हैं। अपने सिद्ध भगवान कितने हैं वो सिद्ध सला में? कितने होंगे बताओ? अनंत है ना? और वे आपको जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे? तो अनंत जीव आपको अभी जान ले, आपको पता ही नहीं है, क्या करें? पर आपकी इच्छा ज्यादा, कुछ लोग जाने, कुछ लोग जाने। तुम कुछ लोग जाने इसके लिए तरस रहे और वे अनंत जान रहे तो उसकी कोई बात ही नहीं है। कौन जान रहे? अरहंत तो सिद्ध है, ठीक है, तो उसका चेहरा मुरझाया रहता है, खिलता नहीं है। क्यों? कि वे भगवान जानेंगे तो वे तो कच्चा चिट्ठा जान लेंगे। मैं जैसा हूं वैसा जान लेंगे ना, और हम ऐसा थोड़ी चाहते हैं कि जैसा मैं हूं सारी दुनिया वैसा जाने। ہم تو یہ چاہتے ہیں میں ہوں بے ایمان اور دنیا ہمیں ایماندار جانے, میں ہوں بھرشت اور دنیا ہمیں چارتربان جانے, کیوں میں ہوں مورخ اور دنیا ہمیں جانوان جانے. ایسا تو کوئی مورخ ہی جانے گا, کیولی بھگوان تو ایسا جانیں گے نہیں. اس لیے کیولی بھگوان جانے اس بات میں ہمیں کوئی رس نہیں ہے. ڈر اور لگتا ہے کہ ہماری کوئی بات گپت نہیں رہے گی, سب جان لی جائے گی. کیوں؟ لیکن میں ایک بھروسہ دلاتا ہوں آپ کو کہ بھگوان جانیں گے تو سب, لیکن کہیں گے کسی سے نہیں. سرکشت ہو نا؟ تو ہم کو بھگوان کا سروپ تو جاننا ہی چاہیے. ہم صبح بھگوان کی پوجا کریں روزانہ جا کے اور ان کا سروپ نہیں جانے. میں راستے میں جاتا تھا, ایک آدمی نے میرے کو نمسکار کیا اور میں نے بھی بڑے پریم سے اس سے نمسکار کیا, تو آپ میرے سے کہتے ہو یہ کون تھا؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا. مانو گے؟ کیوں نہیں بتانا چاہتے؟ بتانا نہیں چاہتے ہو تو مت بتاؤ, لیکن یہ تو مت کہو کہ میں نہیں جانتا. کیوں؟ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ نہیں جانتے, کیونکہ آپ نے اتنی گہری نمسکار کی. اچھا, نمسکار بھی گہری اور اچھلی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ ہم اسے جانتے کہ نہیں جانتے. اب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جہاں اتنی گہری نمسکار کر رہے, نو نو دفعہ ارگ چڑھا رہے, نمسکار کر رہے, تین پردکشنا دے رہے, اور ہم نے کہا بتاؤ یہ کون ہے کہ ہم نہیں جانا, چلے گا؟ ان بھگوان کا سروپ تو ہمیں جاننا ہی پڑے گا نا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں بتایا پورا ادھیائے ہمارا بھی دو مہینے سے چل رہا تھا جے پور میں, کہ بھگوان کا کیسا گیان ہوتا ہے. ساری دنیا کو بھی جانتے ہیں تو کیسے جانتے ہیں؟ برتمان کی تو جانتے ہی ہیں, لیکن بھوت کال کی بھی انت باتیں جانتے ہیں, اور بھوشیہ میں جو ابھی بھئی نہیں ہیں انہیں بھی جانتے ہیں. وہ بھی ہوں گی نہیں جانتے؟ بولو, آپ وچار کرو. یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ بھگوان رشبھ دیو نے بھرت چکرورتی سے, رشبھ دیو سے پوچھا کہ ہے بھگوان آپ تیرتھنکر ہو, پہلے یہاں آپ کی سبھا میں کوئی ایسا جیو بیٹھا ہے جو بھوشیہ میں تیرتھنکر بننے والا ہے, ہے کیا؟ ہوئے تو آپ بتاؤ کون ہے, تو ہم بھوشیہ کے تیرتھنکر کو بھی جان لیں. تو بھگوان کی دیو دھنی میں آیا یہ بات, سب دگمبروں کے اور سیتمبروں کے سب میں لکھی ہے, شاستر کی لکھی بات بول رہا ہوں, اس میں کوئی مدبھید نہیں ہے دگمبر سیتمبروں میں. یہ تمہارا بیٹا جو ماریچ ہے نا, یہ 24واں تیرتھنکر ہوگا اور اس کا نام مہاویر ہوگا, اس کی ماں کا نام ترشلا ہوگا اور پتا کا نام سدھارتھ ہوگا. یہ بات رشبھ دیو نے بتائی. ذرا سوچو, بھگوان کے سموشن میں ہم سب بیٹھے ہوتے اور اس وقت اپنا نام بھگوان بولتے کہ اے بھوشیہ میں تیرتھنکر ہوں گے, تو کیا ہوتا؟ کتنا اچھا رہتا, بولو. یدی اپنا نام گھوشت کرتے تو اپن اب سب لوگ ہماری طرف دیکھیں گے, ٹوپی موپی ٹھیک کر لیتے. لیکن ماریچ کو گسا آیا, اچھا نہیں لگا, کہ تم تو پہلے تیرتھنکر اور ہم 24 میں, ایسا نہیں چلے گا. دوسرے تو بن سکتے ہیں, تم چھوڑ کے ہمیں بنا دو, یہ تو ہم نہیں کہہ رہے, لیکن دوسرے نمبر تو رکھو. 24 में का अर्थ समझते हो आप क्या हुआ? ऋषभ देव युग की आदि में पैदा हुए थे, चौथे काल के शुरू में, और महावीर चौथे काल के अंत में पैदा हुए थे। और चौथा काल कितना है मालूम? 1 करोड़ कोड़ा कोड़ी सागर का। कोड़ा कोड़ी जानते किसे बोलते हैं? मैं समय शिखर गया, डोली में जा रहा था, तो कुछ रास्ते से निकले आप और यात्री, तो उन्होंने कहा पंडित जी जय जनन, पंडित जी जय जनन, पंडित जी जय जनन। तो वो जो ले जा रहे थे ना हमको डोली वाले, बोले अच्छा तुम पंडित जी हो? मैंने कहा हाँ हम पंडित जी हैं। बोलो क्या कहना तुम्हें? तो वे बोले कि हमारा एक प्रश्न है। मैंने कहा भैया पंडित क्या हुए, तुम प्रश्नों से नहीं बचोगे। जैसे माता बहने कहीं भी जाए तो रोटी तो इन्हें बनानी ही पड़ेगी, है ना? ऐसे हम पंडितों का दुर्भाग्य है, कहीं भी जाए, रिश्तेदारी में क्यों ना जाए, किसी की बारात में क्यों ना जाए, तो प्रवचन तो करना ही पड़ेगा। तो वो बोला कि ये सब लोग बोलते हैं कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी, तो जैनियों के भगवान सब कोड़ी ही होते हैं क्या? वो तो वो थे, वे नहीं समझते थे कौन डोली वाले, अपन तो सब समझते हैं ना ये कोड़ा कोड़ी क्या होता होता होगा, कुछ क्या लेना देना, अलग तो चढ़ा दिया ना इतने कोड़ा कोड़ी मुनिराजों को। अरे करोड़ का करोड़ में गुणा करो उसका नाम है कोड़ा कोड़ी। ऐसे समझो 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 10,00,000 करोड़, और करोड़ करोड़ उसका नाम है कोड़ा कोड़ी। और इतने बरस नहीं, इतने सागर, कितना लंबा काल है आप समझो। जब वे कह रहे कि जो 24वां तीर्थंकर होगा तो उसका अर्थ ये हुआ कि अभी एक कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में घूमेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और ये बात उसे स्वीकार नहीं थी अजित झा जी। एक भाई बोले मेरे से, हम तो पूज्य गुरुदेव जी के साथ मोक्ष जाएंगे। टोले के टोले से संबे शिखर की यात्रा करने गए थे ना, ऐसे ही हम मोक्ष भी उनके साथ ही जाएंगे। बोलो पंडित जी आप चलोगे? मैंने कहा नहीं। क्या बोल रहे हो? नहीं, वे बहुत बड़े महापुरुष थे, न मालूम कौन से स्वर्ग में गए होंगे, और सागरों की आयु होगी उनकी, फिर आएंगे और फिर मनुष्य होंगे, फिर तो जाएंगे ना, तो वे सागरों पर्यंत संसार में रहेंगे, हमारा इतना संसार में रहने का विचार नहीं है। क्या ठीक है? हमारा विचार नहीं है, हम क्यों इतने काल तक संसार में रहें? ऊपर के स्वर्ग में जाने का मतलब समझे? इतने काल तक संसार में अचके रहना है, कोई फायदे की चीज नहीं है। अभी बताएंगे, ये 63वीं गाथा में पढ़ी आपको, ये बताएंगे अभी अभी हाल इसमें। तो हमें वो भगवान केवल ज्ञानी हुए, केवल ज्ञान क्या चीज है, हम उनकी पूजा करते हैं तो हमें उन्हें पहचानना चाहिए कि नहीं? तो उनने क्या बता दिया था कि ये इनकी माँ का नाम त्रिशला होगा और पिता का नाम सिद्धार्थ। बात पक्की है ना? इसका क्या मतलब हुआ? सिद्धार्थ के साथ त्रिशला की सगाई ऋषभ देव के जमाने में हो गई थी। क्या सोचो सोचो, नहीं उनने कैसे जानी? ये बात उस समय नक्की थी क्या? नहीं। कितने समय पहले नक्की थी? 1 कोड़ा कोड़ी सागर, और भग तो हमारा 33 सागर से ज्यादा का नहीं होता है, साथ में नरक में भी 33 सागर, सर्वा सिद्धि में भी 33 सागर, तो कितने भव पहले होंगे? क्यों कितने भव पहले, और आयु कर्म तो एक ही भव का बनता है, तो आयु कर्म तो अभी बना नहीं था, तो इतने भवों पहले ऋषभ देव ने ये बात जान ली थी, तो इतने आगे की जानी थी ना उनने उस जमाने में, तो आज अभी से इतने आगे की जान सकते कि नहीं जान सकते, और वह नक्की हुए तो जाने और नक्की नहीं हुए तो। जरा समझना, जब मैं ये समझा रहा था तो एक भाई मेरे से बोला, लड़का था नई उम्र का, कि पंडित जी ये बात सच्ची है कि उनकी सगाई इतने पहले हो गई थी और हमारा तो अभी नहीं, अभी तक नहीं हुई है? तो उनने मान ली, क्या 30 लाख बजे आजादी थी कि नहीं थी, तो वो कह देती कि मैं सिद्धार्थ से शादी नहीं करूंगी, कि सिद्धार्थ को ये आजादी थी कि नहीं थी कि मैं चाहूं तो 30 लाख से शादी करूं और नहीं चाहूं तो नहीं करूं, बोलो। मैंने कहा बोलो नहीं थी ना बेटा, तुम्हें भी नहीं है कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा। 2 पैसे की हांडी खरीदते हैं 5 रुपए की, तो थोक बजाकर लेते हैं, और तुम कहोगे ऐसी हम वैसे ही स्वीकार कर लें आंख मीच के, हम स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने कहा जाओ बेटा देख के आओ, कोई बात नहीं है, लेकिन ठोकना बजाना मत, नहीं तो ठोक पिट के आओगे। हैं? क्या बात करता है, अपनी जीवन साधने के लिए 5 रुपए की हांडी से तुलना करता है क्यों? कि उनकी नक्की होगी, किनकी? सिद्धार्थ की और तुलसीदास की। हमारी नक्की है क्योंकि उनकी लिखी है, हमारी तो नहीं लिखी शास्त्र में, बोलो तो हम आजाद हैं। अरे भाई इतिहास तो महापुरुषों का लिखा जाता, लेकिन होता तो सबका है। हमारा इतिहास लिखा भले ही ना जाए, लेकिन हमारा तो इतिहास है कि नहीं है? जैसे उनकी जन्म तिथि बताई जाती है कि अकबर फला तारीख को पैदा हुआ था, फला तारीख को मरा बताई जाती है, तो हम भी तो किसी तारीख में पैदा हुए होंगे, हमारा भी इतिहास तो है ना। लिखा जाना अलग बात है और होना अलग बात है, और वो तो जो है वो जानते हैं। यदि हम ऐसा जानेंगे कि हमारे भगवान सब जानते हैं, जो हो गया है वो जानते हैं, जो हो रहा है वो जानते हैं, जो भविष्य में होगा वो भी जानते हैं, क्यों? वे हमारे भगवान हैं। क्यों? कि वो कहता है कि नहीं, इसमें तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। क्या भगवान ने जो जान लिया वो होगा, हम जैसा चाहें वैसा नहीं होगा, हम चाहते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा हो। मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, कोई आदमी आज से 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर के समूह शरण में जाता और ये पूछता कि उस बाल भवन में आज इतने बजे क्या कार्यक्रम होगा, तो भगवान महावीर बता सकते थे कि नहीं? बता देते। क्या बता देते? क्या हमारा व्याख्यान होगा, आप लोग श्रोता होगे और आप कहां बैठे होगे, वो लोकेशन भी क्यों? अनिल बाबू बता देते, अपने भगवान इतने जानने वाले हैं, इतने जानने वाले हैं, इसका मतलब ये आज की सभा का कौन कहां बैठेगा ये बात भी 2500 वर्ष पहले नक्की थी। मैं इसका मतलब मैं इसके लिए भी बनाऊं, मैं जहां चाहूं वहां बैठ भी नहीं सकता। ऐसी गुलामी हमें पसंद नहीं है, ये गुलामी है कि आजादी, बोलो। देखो सुनो, भगवान के ज्ञान में जैसा आया है वैसा होगा एक बात, और हम चाहेंगे वैसा होगा दूसरी बात। इसमें 2 में से वोट देना है आपको कि कैसा हूं? आज नक्की होना है ये, तो आप किसे वोट दोगे? भगवान का तो ज्ञान और हमारी चाह, चाह तो खोटी चीज है ना, चाह तो छोड़ने लायक है कि नहीं। तो हम भगवान के ज्ञान को स्वीकार न करके अपनी चाह को महत्व दें और उसमें हमें अपनी आजादी दिखे, इससे बड़ा अज्ञान इस जगत में क्या होगा। नहीं? तो भगवान की सर्वज्ञता हमें समझना पड़ेगी। और वीतरागता, वीतरागता माने समझते हैं आप कि रंच मात्र भी किसी से राग द्वेष नहीं होना, है ना, किसी से भी राग द्वेष नहीं होना, उसका नाम है वीतरागता। ये दो बातें भगवान में होनी चाहिए, तब वे हितोपदेशी बन सकते हैं, हित का उपदेश तब दे सकते हैं। आदमी झूठ क्यों बोलता है, या तो अज्ञान से या राग द्वेष से, या तो वो जानता नहीं है तो झूठ बोलेगा, और या उसे किसी से राग द्वेष है तो झूठ बोलेगा। अब उनमें अज्ञान भी नहीं है और राग द्वेष भी नहीं है, ये क्यों झूठ बोलेंगे, फिर तो सारी बात सही होगी ना। इसलिए उनका उपदेश हितोपदेशी होते हैं वे। तो ये बात सर्वज्ञ ज्ञानाधिकार में बहुत विस्तार से बताई मैंने, तो आपको संक्षेप में 5-10 मिनट में निपटा दिया, ख्याल में आई ना, वहां बहुत विस्तार से ये बात बताई है, हैं? फिर उसके सुखाधिकार के जिसको अतींद्रिय ज्ञान होता है उसको अतींद्रिय सुख होता है, और जिसको इंद्रिय ज्ञान होता है उसे इंद्रिय सुख होता है। अपन सब इंद्रिय ज्ञान वाले हैं, इन 5 इंद्रियों से जानते देखते हैं, इसलिए हमें इंद्रिय सुख है, सुख दुख जो भी है। और केवल ज्ञानी अतींद्रिय ज्ञान वाले होते हुए इंद्रियों से नहीं जानते, उन्हें आंख से नहीं देखना पड़ता, ख्याल में आए ना, सीधे आत्मा से जानते हैं, तो वे स्वाधीन है उनका ज्ञान पूरी तरीके से, वो किसी दूसरे के पराधीन नहीं है रंज मात्र भी। तो ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ भगवान को हम जानते हैं, तो इन्हें के सुख की बात कह रहे थे कि वो अतींद्रिय सुख, जो सुख इंद्रियों से नहीं भोगना पड़े, जिसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा सुख उन्हें था, और वो ही असली सुख है। ये इंद्रिय सुख वाला सुख तो असली है ही नहीं, ये बात समझा रहे थे वो। किसमें? सुखाधिकार में। ये गाथा कौन सी है? सुखाधिकार की गाथा है। तो कुछ शिष्य बोले कि महाराज वो तो अच्छा है ही, सुख मान लिया हमने, लेकिन ये संसार में भी तो सुख है, हम लोगों को थोड़ा संसार में कहीं सुख बताओ, वो मोक्ष वाला सुख रहने दो, पंचम काल में तो वैसे ही मोक्ष नहीं मिलता है, उसमें क्यों ललचाते हो हमें, तुम संसार में हमें सुख बताओ। मैं सच्ची घटना सुनाता हूं आपको, बहुत पुरानी है, 50 साल पुरानी है। मैं बंबई भूलेश्वर के मंदिर में प्रवचन करने गया था, 10 दिन हो जाने के बाद जितने भी विद्वान बंबई में पहुंचते हैं, तो साहू श्याम प्रसाद जी थे तब, तो वे अपने यहाँ सबको खाने पे बुलाते हैं पूर्णमासी के दिन, 14 पास हो जाए उसके बाद सब विद्वानों को बुलाते हैं। तो सबको बुलाया था, हमें भी बुलाया था, लेकिन हमारे मंदिर की उस दिन रथ यात्रा थी, तो हम जरा जाने में लेट हो गए। सब विद्वान वहां पहुंच गए थे, ख्याल में आया ना, और हम जरा पहुंच नहीं थे, वहां बातचीत हो रही थी कि एक पंडित आया है भूलेश्वर में, तो वो सब यही कहता है कि आत्मा में सुख है, आत्मा में सुख है, संसार में सुख है ही नहीं। तो बोले पंडित जी आप हमें थोड़ा संसार में भी सुख बताओ, ऐसा साहू जी ने कहा, वो सब पंडित खिलखिलाकर हंस पड़े, क्योंकि वो सब यही चर्चा कर रहे थे पहले, मैं तो था नहीं, मेरे ही बारे में चर्चा कर रहे थे यही बात। तो मैंने देखा ये सब हंस रहे, तो मैंने कहा सेठ जी अब आप कहते हो कि हम तुम्हें संसार में सुख बताएं, अब हम क्या करें, हमारे दुर्भाग्य से हमने यही पढ़ा है कि जो संसार विषय सुख हो तो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। अब हम क्या करें, हमने तो यही पढ़ा है तो यही बताते हैं। अब आपके ये पंडित लोगों को संसार में भी सुख दिखाई देता है और ये आपको बताते होंगे क्यों, हम तो ये सुना है कि संसार में सुख है ही नहीं। मैंने कहा मैंने एक रिसर्च की है, मुझे क्या है क्या बताओ कि शांतिनाथ भगवान की आंख में मोतियां बिंदु था। घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। क्या शांतिनाथ भगवान की आंख में मोतियां बिंदु था, एक सब बोले क्या करे क्या करे। मैंने कहा सुनो, ऐसी बीमारी तो हरेक की आंख में होती है कि उन्हें कुछ दिखे नहीं, लेकिन ऐसी बीमारी आज तक नहीं सुनी कि जो चीज नहीं हो वो भी दिखे होती। आप समझ रहे हैं क्या, आप आज आंख में हम अंधे हो गए तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ये चश्मा दिखे ऐसा हो सकता, कुछ दिखता नहीं है। तो शांतिनाथ भगवान को जिस संसार में सुख नहीं दिखा और वे दीक्षा लेके चले गए, उस संसार में सुख तुम्हारे इन पंडितों को दिखता है तो उनकी आंख में कोई ना कोई खराबी होगी कि नहीं होगी। फिर मैंने कहा कल यही मत कहना कि एक पंडित आया था और वो कहता था शांतिनाथ भगवान की आंख में मोती। मेरे वैज्ञ को आप समझे होंगे, सही रूप में लेना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शांतिनाथ की आंख में मोतियां बिंदु थी, मैं ये कह के क्या कहना चाहता हूँ कि नहीं हो वो चीज दिख जाए, ऐसी तो कोई बीमारी हमने आज तक देखी नहीं। इन्हें संसार में सुख है ही नहीं, भगवान तो ऐसा कहते हैं वो इन्हें दिखाई देता है, हम क्या करें। तो भाई कुछ लोग बोले यहाँ प्रवचन सार में कि संसार में भी सुख है, हम तो एक दफे देखेंगे और देख के नक्की करेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं मानेंगे। ये प्रश्न खड़ा हुआ तो उनने कहा देखो भैया कुछ बातें ऐसी होती हैं कि दूसरे के अनुभव से ही सीख ली जाती हैं, हर बातें खुद प्रयोग कर करके नहीं सीखना चाहिए, सीख सकते हैं अपन। आदमी में और पशु में फर्क क्या है, बेचारे पशु को सब कुछ अपने हाथ से ही करना पड़ता है, माँ बाप कुछ सिखाते नहीं हैं, उनके कोई स्कूल नहीं खुले हैं क्यों, और हमें तो माँ बाप सिखाते हैं कि अग्नि गर्म होती है, इस पर हाथ रखोगे तो जल जाओगे, है ना। पशु को तो छू के ही सीखना पड़ता है ना, आदमी में और पशु में यही तो फर्क है। तो यदि हम ये नहीं मानेंगे कि कुछ हम दूसरों के माँ बाप के ज्ञान से सीख लें और खुद ही सीखेंगे सब, कि हम पांच इंद्रिय के भोग पहले भोगेंगे और फिर निर्णय करेंगे कि इनमें सुख है कि नहीं है, तो भोग तो रहे हो अभी, इतने से क्या होता है। जब हमारे पास अरबों रुपया होंगे, जब हम टाटा बिरला बन जाएंगे, अंबानी बन जाएंगे, तब आएगा, तब सुख बरसेगा। अभी तो मजदूरी करना पड़ती है, रोजी ना आठ घंटा ढंगा पचना पड़ता है, खुद जाना पड़ता है ऑफिस में, क्यों हम पहले वो बनेंगे, पहले चक्रवर्ती बनेंगे, इंद्र बनेंगे और फिर देखेंगे कि चक्रवर्ती पद में सुख है कि नहीं। तो कहो भैया कुछ चीजें दूसरों के अनुभव से सीख लेना चाहिए। वो एक जहर होता है ना कि जिसका स्वाद आज तक पता नहीं चला, जबान पर रखते ही आदमी मर जाता है, वो ये नहीं बता पाता है कि मीठा है कि कड़वा है। ऐसा रखा, यहाँ लिख दिया मीठा कड़वा सब, हाथ में पेंसिल दे दी कि तुम्हें हम चखाएंगे और तुम जब निशान लगा देना, लेकिन उसे इतना भी समय नहीं मिला कि वो निशान लगा सके। आज तक उसका जहर का स्वाद पता नहीं है, तो उसको भी चक्के देखोगे, इसके बाप दादों के कहने से मान लोगे, सोचो ऐसा मत करो। तो वो उससे कह रहे हैं देखो अब गाथाएं पढ़ो, कौन पढ़ेगा प्राकृत की गाथाएं बहुत अच्छी तरीके से, कौन सी 83, 63 और 64, हाँ पढ़ो।
आसनिया
देखो अब कुछ समझ में नहीं आया ना, कालाक्षर भैंस बराबर है ना, अब इसका हिंदी अनुवाद पढ़ो सब समझ में आएगा। इसलिए कहता हूँ कि आप इस पर ध्यान देंगे तो आपकी समझ में सब आएगा। कितना सरल काम हुआ है ये, आप जो अब पढ़ो इसे ढंग से। साफ लिखा हुआ है, देखो क्लियर। देखो नरपति माने चक्रवर्ती, ठीक है, नरपति माने चक्रवर्ती, सुरपति माने इंद्र और असुरपति माने नागेंद्र। तो दुनिया में तीन लोक के तीन राजा महाराजा, चक्रवर्ती मनुष्यों में, देव स्वर्ग में ऊपर ऊर्ध लोक में इंद्र और अधो लोक में असुरेंद्र, भवन वासियों के टॉप। तीनों लोग के एक एक टॉप के पांच इंद्रियों के विषय वाले पकड़े, जिनके पास सबसे ज्यादा विभूति है। अभी तुम्हारे पास चक्रवर्ती जैसी विभूति तो नहीं हो गई, इंद्र जैसी विभूति तो नहीं हो गई। अब इन लोगों ने, इनके पास इतनी विभूति हुई और इन्हें इसमें सुख नहीं दिखा, तब तो चक्रवर्ती ने दीक्षा ली। ये सब छोड़ के गए कि नहीं, 96,000 पत्नियों को छोड़ के गए कि नहीं, क्यों समझ गया ना। इतनी बड़ी विभूति इनके पास थी और उन्हें उसमें सुख नजर नहीं आया, इसलिए तो उन्होंने दीक्षा ली। और जब दीक्षा ली तब मोक्ष गए। आप जानते हैं चक्रवर्ती यदि चक्रवर्ती की अवस्था में मरे तो नियम से नरक जाए, और चक्रवर्ती नरक में जाएगा तो छोटे मोटे में नहीं जाएगा, सीधा साथ में। साथ में क्यों जाएगा? क्योंकि आठवां नरक नहीं है। क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, खूब पाप करते हैं। सर सेठ हुकुमचंद जी इंदौर में 7 मील से उनके कपड़ा के, हुकुमचंद मील, राजकुमार मील, हीरा मील। अब 8वें की तैयारी चल रही थी, नाप जोक हो रही थी, इंजीनियर आए थे बैठे थे, तो सेठानी ने पूछा सेठ जी से कि क्या हो रहा है, तो 8वां मील बन रहा है तो उसका नक्शा मक्शा पास हो रहे हैं। तो सेठानी बोली सेठ जी नरक साथ ही होते हैं, देवर बात। तो उन्होंने उसी वक्त विचार छोड़ दिया 8वां मील डालने का। दादे पर अब आता है ना, अपने बहु धंधी बहु दुखी, चक्रवर्ती चक्रवर्ती तुम्हें मरे तो गारंटी से नरक जाए। क्योंकि भरत चक्रवर्ती तो मोक्ष गए, भरत चक्रवर्ती मोक्ष नहीं गए, भरत मुनि मोक्ष गए हैं। जब उनने चक्रवर्ती से छोड़ा और मुनि दीक्षा ली, कोई भी व्यक्ति मुनि दीक्षा के बिना मोक्ष नहीं जा सकता, नग्न दिगंबर दशा हुए बिना किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। कि उनके सुख नहीं है चक्कर। अब वो कहते देखो नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दब दाह से, पांच इंद्रियों के जो विषय है ना, स्पर्शन इंद्रिय का विषय समझ गए, दर्शन इंद्रिय का विषय खाना पीना स्वाद की चीजें, ज्ञान इंद्रिय का विषय अच्छी चीजें सूंघना, चक्षु का विषय अच्छे अच्छे दृश्य देखना, कर्ण का विषय मीठे मीठे गाना सुनना, समझ गए ना। ये पांच इंद्रियों की विषय की दबदाह, दावाग्नि लग रही, आग लग गई, अंदर में उनके हृदय में किनके चक्रवर्ती इंद्र और नागेंद्र के हृदय में इंद्रिय विषय दब दहाय से इसकी भयंकर आग लगी है। जो जंगल में आग लग जाती है ना बांसों के आपस में लगने से, और सूखे सूखे बांस हैं, जंगल है पूरा, उसे कौन बुझाए। ऐसी भयंकर आग लगी है अंदर काय की, पांच इंद्रियों के भोगों की अग्नि की दाह लगी, इंद्रिय विषय दब दाह से पीड़ित रहे। वे 24 घंटा पीड़ित रहते हैं, सह सके ना उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वे। इसलिए रमणीक विषयों में रमे, वे रमणीक विषयों में रमते हैं। ये उनके रमणीक विषयों की मौजूदगी उनके अनंत दुखी होने की निशानी है। आप जानते हैं भरत चक्रवर्ती जब गए थे ना 6 खंड को जीतने, मालूम 3 समाचार एक साथ सुने थे कि नहीं? ये तो मालूम है ना सबको कि पुत्र रत्न की प्राप्ति और भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान और चक्र रत्न की प्राप्ति। तो वो जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी वो कोई पहला बेटा नहीं था, पहला बेटा तो मारीच आदिनाथ के साथ दीक्षा ले गया था। ये तो नवानो कौन 100वां होगा कि 150वां होगा, मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे कहने का मतलब, समझ गया ना। तो वो जाकर के एक दिन उसका उत्सव किया, भगवान के दर्शन करने सबसे पहले गए, फिर पुत्र रत्न का उत्सव किया, फिर 60,000 वर्ष को युद्ध करने निकल गए। कितने? वो भगवान के दर्शन एक दिन में निपटा लिए, समझ गए ना। ऐसा नहीं है मैंने अब भगवान के दर्शन को महत्व दिया, सबसे पहले भगवान के दर्शन करने गया, वो युद्ध लड़ने नहीं गया है, धोखे में बताना। छोटा काम जल्दी निपटा लेते ना, आप तो बनिए हो ना। एक ग्राहक ऐसा आता है कि जो 10 लाख का माल खरीदेगा 1 लाख रुपया बचेगा, एक ऐसा आता है 50 रुपये का खरीदेगा 2 रुपया बचेंगे, तो कौन सा ग्राहक पहले निपटाओगे? अरे भैया तुम आओ बैठो, चाय बुलाओ, नाश्ता करो, खाने बैठो, तू इसे बुलाओ, इसे निपटाओ जल्दी भगाओ। वो छोटे ग्राहक को अपन पहले निपटा देते हैं, महत्व ज्यादा महत्व दे रहे, कोई बड़ा नहीं है, उनने निपटाया जल्दी भगवान को निपटाओ, घबराना नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ आप सोचो उस बात को, है ना। और 60,000 वर्ष को लड़ने निकल गए, यहाँ भगवान का उपदेश होता रहा। आप कल प्रवचन में नहीं आएंगे अजित प्रसाद जी, तो मैं कहूंगा धंधे में लग गए, क्या हो गया, क्या बात है, प्रवचन में हमें क्यों नहीं मिला। एक देखो कैसे लोग हैं, इतनी भी रुचि नहीं है, एक मिनट में हम निंदा करके आपको अयोग्य घोषित कर देंगे। और भरत चक्रवर्ती को कोई नहीं बोलता, 60,000 वर्ष तक उनके बाप का ऋषभदेव का प्रवचन होता रहा समो शरण में, और वो लड़ने के लिए निकल गए। साथ में कौन कौन गया था मालूम है? एक दफे पढ़ो महापुराण, तुम भी पढ़ो कुछ, हमें हमको पढ़वाओगे सब। सारा रणिवास साथ में गया था, पत्नियां सब साथ में गई थी, और हर बरस में 2-4 शादियां होती थी। 60,000 वर्ष में 96,000 शादियां हुई रस्ते में ही, और हजारों बच्चे पैदा हुए। पूरा कुनवा 5 इंद्रियों के विषयों का इंतजाम चक्रवर्ती के विषय में वो नहीं होता, क्या बोलते, विघ्न नहीं होता। इसलिए चक्रवर्ती की पटरानी मासिक धर्म से नहीं होती, उसके बाल बच्चे नहीं होते, क्योंकि होंगे तो विघ्न पड़ेगा। इतना सुखी, ये इतना सुखी नहीं, ये कह रहे इतना दुखी कि एक मिनट भी चैन नहीं, उसके निरंतर भोग होता है। देखो जो पंचेंद्रिय विषयों में रति वे हैं स्वाभाविक दुखी जन, जिनके 5 इंद्रियों के विषयों में रति जिनको है वे स्वभाव से ही दुखी हैं। वे हैं स्वाभाविक दुखी जन, और दुख के बिना इस विषय में व्यापार हो सकता नहीं। यदि दुख नहीं होता तो ये पंच इंद्रिय के भोगों में काय को उलझते, ख्याल में है ना। अभी देखो मैं पढ़ता हूँ शांति से, है ना, फिर आप सुनो दोनों दोहों को। मेरा पढ़ने लायक गला नहीं है इसलिए मैं दूसरों से पढ़वाता हूँ, लेकिन मुझे संतोष भी तो नहीं होता दूसरों से। देखो नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दव दाह से पीड़ित रहे सह सके ना रमणी के विषयों में रमे। क्या है जिनके स्वभाव के क्या विषय रति, बोल बोल इसमें अलग लिखा हाँ मैं वे हैं स्वभाव के दुखी जन इसमें अलग है इसलिए मैंने कहा है जो विषय सुख में लीन वे हैं स्वाभाविक दुखी जन उसकी जगह। अब जिस समय टीका लिखी होगी एक दफे अलग अनुवाद किया होगा तो ये लिख दिया, जब अनुशीलन लिखा तो अलग अनुवाद किया होगा तो वो लिख दिया। ऐसा ध्यान थोड़ी रहता कभी तो अपन कर चुके तो उसी को लाइन देख के लिख दें, वहां से वही का वही हो जाता। इसने ऐसा लिखा इसलिए मैं अटक गया, कैसे बोली वो तो पहले तो मैं सही बोल गया था क्योंकि मुझे याद था वो। अभी आप समझ लो आज अपन कहाँ आ गए, कहाँ खड़े हैं, ये आपको ख्याल में आ गया। अब इसी के आगे अपन चलेंगे, तो ये 10-12 गाथाएं अपन कल पाठ करेंगे, तो आप पाठ करने के पहले आ जाना और फिर इनका अर्थ समझने की कोशिश करना तो आपको समझ में आएगा, मेरा पक्का भरोसा है। ये मत समझना कि ये समय बेकार जा रहा है, ये जब हो जाएगा पाठ तब चलेंगे अपन, क्योंकि ये गाथाएं कुंद कुंद की डायरेक्ट है। तो मैं तो अपना भी नमक मंच में लाऊंगा ना कुछ तो तुम्हें अर्थ बताऊंगा, लेकिन ये तो कुंद कुंद का असली माल है, इसलिए इसके पाठ करने में हमारा समय खराब होता है ऐसा मत सोचना। पूरी सभा जितने लोग अभी आए हैं वो कल प्रवचन होने के पहले हाजिर रहना चाहिए, लेकिन अपनी तो आदत ऐसी है ना जैसे बेरी के बेर टपकते हैं धीरे 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 धीरे, ऐसे अपन श्रोता धीरे धीरे टपकते हैं, समझ में आएगा। इसलिए कल अपन इसके आगे चर्चा करेंगे।